एंग्जाइटी और फियर।
जहाँ भी भगवान के कथाओं शुद्ध कथाओं के बारे में चर्चा की जाती है, वहाँ पे सुनने वाले जो श्रोतागण हैं वो सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, कम से कम उस समय के लिए तो हो जाते हैं। और यही नहीं, वो एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना से भी मुक्त हो जाते हैं और किसी प्रकार की कुंठा और भय भी नहीं रहती। तात्पर्य, वैकुंठ का मतलब है बिना कुंठा के। और भौतिक जगत में हर तरफ कुंठा है, जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात। जो जीवात्माएं हैं जिन्होंने इस भौतिक जगत में अपना घर बनाया है, वो सब कुंठा से पूर्ण हैं। और एक जगह जो है तुरंत वैकुंठ बन जाता है, जहाँ पे परम भगवान की कथाओं का चर्चा शुद्ध भक्तों के द्वारा किया जाता है। यह श्रवणम कीर्तनम विष्णु का तरीका है कि जब हम भगवान विष्णु के श्रवण और कीर्तन करते हैं, जैसा कि भगवान स्वयं कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदये सुवा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। हे मेरे प्रिय नारद, वास्तव में मैं अपने धाम में नहीं रह रहा, वैकुंठ में, न कि मैं योगियों के हृदय में ही रह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में रह रहा हूँ, जहाँ मेरे दिव्य नामों का, मेरे रूप का, मेरे लीलाओं का, मेरे गुणों की चर्चा की जाती है। दिव्य उच्चारण में भगवान की उपस्थिति के कारण वैकुंठ लोक का वातावरण प्रबुद्ध होता है। यह वातावरण भय तथा कुंठा से मुक्त होता है। इसमें एक जीव दूसरे जीव से डरता नहीं। भगवान के पवित्र नाम तथा गुणों के श्रवण से मनुष्य पुण्य कर्म करने लगता है। श्रीमदाम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन भागवत पहला स्कंद दूसरा अध्याय 17वां श्लोक। इस प्रकार उसकी भौतिक तृष्णाएं तुरंत समाप्त हो जाती हैं। कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा चलाया गया संकीर्तन आंदोलन वैकुंठ लोक की सृष्टि करने के लिए है, जहाँ कोई कुंठा नहीं है। इसकी विधि है श्रवणम कीर्तनम विष्णु द्वारा सारे संसार में प्रचार। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने संगी से द्वेष करता है, जब तक मानव समाज में हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का संकीर्तन यज्ञ नहीं होता, तब तक उसमें पाशविक विद्वेष
अनंजन प्रवचन हिंदी में बोलूंगा, थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगा। जब मैं इंग्लिश में बोलूंगा प्रभु जी अनुवाद करेंगे। आप सबको स्वागत करते हैं ये रविवार के कार्यक्रम में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रचेताओं की प्रार्थना। कथा से क्या लाभ होगा, क्योंकि हम याद नहीं रखते हैं कुछ भी। इसके संबंध में आज के श्लोक अभी सुना हमने, जिसमें क्या बताते हैं अनुवाद।
जब भी दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा चलती है, श्रोतागण भले ही क्षण भर के लिए क्यों न हो, समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। यही नहीं, वे एक दूसरे से न तो वैर करते हैं, न किसी कुंठा या भय से ग्रस्त होते हैं।
हाँ, सब तरह के ईर्ष्या भावना, सब तरह के भौतिक चेतना और सब तरह के दुख, ये सब हट जाता है जिस समय हम कृष्ण कथा को हम सुनते हैं, इस तरह वो बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि कृष्ण की कथा सुनने से वो कृष्ण कथा का जो दिव्य ध्वनि है, वो जब हमारे कान के अंदर प्रवेश करता है और हृदय में प्रवेश करता है, तभी हमें कृष्ण का आश्रय प्राप्त होता है। तो कृष्ण का आश्रय किसके समान है, वो एक सुंदर मधुर उदाहरण देते हैं। इधर नंबर 32 श्लोक में है, पारिजातेंजसा लब्धे सारंगोन्यान सेवते त्वदंग्रिमूलमासाद्य साक्षात् किं किं वृणीमहि। 32 पारिजाते का मतलब पारिजात पेड़। जब एक पारिजात पेड़ मिल जाता है एक मधुमक्खी को, पारिजात अंजसा लब्धे का मतलब मिल जाता है, सारंग सारंग का मतलब क्या है, मधुमक्खी, सारम गा, गा का मतलब जो घूमता रहता है, सारम का मतलब घूम घूम कर फूलों के अंदर जो सार है, जो मधु है, उसको इकट्ठा करता है, इसलिए उसका नाम क्या है, सारंगा। तो सारंगा जो है वो अलग अलग फूलों के ऊपर बैठकर वो मधु इकट्ठा करके अपने घर में जाकर रखता है वो। लेकिन इधर बताते हैं इस तरह घूमने वाले मधुमक्खी जो है उसको कभी कभी एक पारिजात का पेड़ मिल जाता है। अगर वो पेड़ मिल गया तो क्या होता है, वो पेड़ में इतना शहद होता है कि उसको किसी दूसरे फूल को ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ता उसको। इस तरह बताते हैं त्वदंग्रि मूलम आसाद्य, आपके पदकमलों के आश्रय अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो गया तो उसने अपने जीवन में अपना मार्ग ढूंढ लिया है, आपके पदकमलों का आश्रय प्राप्त हो गया है, और वो किसी भी तरह के भौतिक चीजों में ऐसे व्यक्ति रमण कभी नहीं करता। किम किम वृणीमही, और क्या हम वर आपसे मांग सकते हैं भगवान, अभी तो हमें मिल गया आपके पदकमलों का आश्रय, और कुछ हमें ना नहीं चाहिए, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह इन तीन श्लोकों में हम क्या देखते हैं, इन तीन श्लोकों का सार ऐसा है कि भगवान की भक्तों के संग के लिए हर एक व्यक्ति को आतुर रहना चाहिए, और ऐसे भगवान के भक्तों के संग में सुनकर कृष्ण कथा सुननी चाहिए, और कृष्ण कथा सुन सुनकर जब हम उसमें लय हो जाएंगे, हमारा मन लग जाएगा उसमें पूरा, तभी हम असली दिव्य आनंद की मधु जो है उसको आस्वादन करेंगे। जब उस दिव्य आनंद की आस्वादन हम करते हैं उसमें इतना हम डूब जाएंगे कि किसी भी तरह का भौतिक दुनिया की जो विषय वासनाएं हैं उनके ऊपर हमारे आकर्षण वो कट जाएगा और आकर्षण ही होगा, और इस भौतिक दुनिया के दुख, भौतिक दुनिया की ईर्ष्या, इस भौतिक दुनिया के तरह तरह के त्रिविध ताप, ये चीज़ जो हैं इनसे हम पूर्ण रूप से ऊपर उठ जाएंगे। ये श्लोकों को मैंने क्यों लिया था, मैं पढ़ा था हरनाम चिंतामणि में, ऐसा बताया जाता है कि अगर एक साधक जो है वो सही भावना के साथ हरिनाम नहीं लेते हैं तो ऐसे जब से ज़्यादा उन्नति नहीं होगा आध्यात्मिक जीवन में। हम देखेंगे कि जिस तरह जैसे कमरे में एक रोशनी लाइट लगा देते हैं तुरंत जो भी सर्प है बिच्छू है सब भाग जाएंगे, है ना, क्योंकि अंधेरे में वो रह सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं रह सकते हैं वो। इस तरह जब हम रोज करते हैं हरे कृष्ण जप करते हैं लेकिन कभी कभी हमारा मन नहीं लगता है, रुचि नहीं लगता है, सही तरह का भावना नहीं है, कभी कभी हम ऐसे ही नाम नाम को पूरा करने के लिए हम करते हैं, लेकिन किस चेतना के साथ हमें भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना चाहिए, उसके लिए शास्त्र में ही बताया गया है। शरणागति के षड विधि दिए गए हैं, उन विधियों को अगर हम स्मरण करेंगे, उन विधियों को अपने हृदय में स्वीकारेंगे और उन विधियों को अपनाते हुए मन को उन विधियों के साथ जोड़ते हुए अगर हम नाम जप करेंगे, उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। उसका आपको मालूम है, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। मैं हरेक का मतलब संक्षिप्त रूप में मैं बताना चाहूँगा। पहले बताया गया है कि दोज थिंग्स विच ऑलवेज हेल्प इंक्रीज डिवोशन शुड बी एक्सेप्टेड इन वंस लाइफ विद रिलिश।
जो भी चीज़ें हमारे भक्ति को बढ़ाने के लिए मदद करती है, उसको बहुत ही स्वाद से लेना चाहिए।
दोज थिंग्स विच इम्पीड डिवोशन शुड बी रिजेक्टेड इन डिसगस्ट।
जो हमारे भक्ति के लिए बाधा है, उसको हमें धुतकार देना चाहिए।
और एक व्यक्ति को पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि कृष्ण को छोड़कर किसी भी तरह का आश्रय नहीं है मुझे इस दुनिया में। अनेक अनेक बार हम डॉक्टरों का आश्रय लेते हैं, पुलिस का आश्रय लेते हैं, मिलिट्री का आश्रय लेते हैं, कभी कभी बैंकों का आश्रय लेते हैं, लेकिन ये सब आश्रय जो हैं वो चले जाने वाले आश्रय हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ही अंतिम आश्रय है। और एक व्यक्ति को ये भी सोचना चाहिए कि कृष्ण ही मेरे भर्ता हैं, मुझे पालन पोषण करने वाले हैं, इस तरह सोचना चाहिए। मैंने एक सुंदर श्लोक पढ़ा था चाणक्य के श्लोकों में। एक्चुअली चाणक्य तो ब्राह्मण है, कभी कभी उनके श्लोकों में भी हमारे से शास्त्र से संबंधित हम श्लोकों को देखते हैं। ऐसा एक श्लोक आता है चाणक्य के नीति में, का चिंता मम जीवने यदि हरिम विश्वम भरो गीयते नोचे दर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथ निस्सरे इत्यालोच मुहुर्मुहुर यदुपते लक्ष्मीपते केवलम पत्पादाम्बुज सेवने न सततम कालम मया नीयते। वो बताते हैं कि भगवान का चिंता मम जीवने यदि हरिम, अभी मुझे ये जान गया मैं कि भगवान हरि ही इस सारे दुनिया को पालन पोषण करने वाले हैं। हर एक जीव को भोजन पानी जो भी व्यवस्था करना होता है भगवान हरि ही करते हैं, ये मैंने जान लिया है। अभी जब मैंने ये जान लिया तो तुरंत मेरे मन में विचार आया कि एक बच्चा का जब जन्म होता है तुरंत उसके माँ के स्तन में दूध प्राप्त हो जाता है उसको। इसको देखकर मुझे विचार आ रहा है, चाणक्य बता रहे हैं कि इति आलोच्य मुहुर मुहुर यदुपते, हे भगवान यदुपति, लक्ष्मीपते केवलम, हे लक्ष्मीपति मैं आपका स्मरण करता हूँ, अभी मैंने निर्णय कर लिया है त्वत्पाद अम्बुज सेवनेन सततम, आपके पदकमलों में रहकर मैं हमेशा के लिए मैं सेवा करने वाला हूँ, कालम मया नियते, ऐसे में काल को मैं बिताऊंगा, इस तरह बताते हैं। क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे पालन पोषण करने वाले आप ही हो, इस तरह बताते हैं। इस तरह एक भक्त सोचता है कि भगवान ही मेरे भर्ता हैं, ऐसे तो ये पूर्ण विश्वास रखना इस बात के ऊपर। थिंकिंग वन सेल्फ एज लो अनक्वालिफाइड विथ नो पोजिशंस,
व्यक्ति को अपने आप को नम्र और बिना किसी चीज़ों के रहित समझना चाहिए।
बीइंग सेल्फ सरेंडर्ड
और आत्म
निवेदन
समर्पण,
आत्मसमर्पण यार। तो आत्मसमर्पण का मतलब है मैं और मेरा, इस अहंकार को त्यागना और समझना है कि जब भगवान मुझे अपने धाम में वापस ले लेंगे मैं जाऊंगा, और अगर भगवान बोलेंगे मुझे हजारों जन्म इस दुनिया में तुम हो तो मैं इस दुनिया में रहूंगा, जब भगवान मुझे सुरक्षा करेंगे तभी मैं बचूंगा, जब भगवान मुझे मारना चाहते हैं मैं मरूंगा, जो भगवान अगर मुझे आयुषारा में रखना चाहते हैं तो मैं रहूँगा, अगर भगवान मुझे गरीब अवस्था में रखना चाहते हैं तो उस अवस्था में रहूँगा। इस तरह पूर्ण तरीके से भगवान के ऊपर निर्भर रहना और भगवान के ऊपर छोड़ देना, ये आत्मनिवेदन है इस तरह। तो ये षडविधा शरणागति, ऐसे बताया गया कि ये छह विधि जो हैं, इसको शरणागति के छह विधि बताए गए हैं। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षस्य इति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागति। जैसे एक स्त्री होती है, उसको अपने अच्छी तरह मालूम है कि मेरे पति मेरे बरता है, तो कुमकुम पहनती है, जिसे हम समझ सकते हैं कि एक स्त्री का शादी हुआ है। इस तरह हम भी तिलक पहनते हैं, जिससे कोई भी समझ जाता है कि ये भगवान का भक्त है, इसे तिलक पहना है ना। ये एक स्त्री इसको क्या बोलते हैं, इसको पहनती है ना
मंगलसूत्र,
मंगलसूत्र पहनती है, जिससे आप जानते हो कि उसका शादी हुआ है। तो हम भी कंठी माला पहनते हैं, नियम पालन करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब माया अपने विविध आकर्षणों के साथ आकर कड़ी हो जाती है भक्त के सामने, भक्त माया को इस तरह के एक गंभीर आंखों के साथ देखते हैं कि माया भागकर भाग जाती है उधर से, वो डर के मारे। क्योंकि जिस तरह एक पतिव्रता नारी है, उसके पास आकर कोई भी पर पुरुष उसके पास दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। अगर वो इस तरह करने के लिए प्रयत्न करेगा तो उसको जरूर कुछ दंड प्राप्त होगा। इस तरह भक्त भी ये षड्विधा शरणागति इसको अपनाते हैं और इस तरह जानते हैं कि भगवान ही मेरे पति हैं। भगवान को शास्त्र में बताया गया है सात्वताम पति, ऐसे नाम से बुलाया गया है भगवान को। भगवान भक्तों के पति हैं, वो पतियों के पति हैं। पतिम पति नाम परमम परस्ताद विदाम देवम भुवनेश्वमिद्यम तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च देवतम पतिम पति नाम, ऐसे बताया गया है। तो ये भावना इन छह अंगों में जो बताया गया है, इस भावना को अपने जीवन में लागू करने के लिए भक्त को अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जो हरे कृष्ण जब करते हैं उनका हृदय की भावना ये होनी चाहिए, ये षड्विधा शरणागति की भावना। अगर ये भावना नहीं होगा, हमारे नाम जप जो है वो बहुत सुपरफिशियल बाहरी,
सुपरफिशियल ऊपर सतह ही,
हाँ
ऊपर सतह
सुपरफिशियल हो सकता है, वो गहरा नहीं होगा। अगर हमारा जप गहरा नहीं होगा तो हमारे हृदय में जो तरह तरह के भौतिक वासनाएं हैं, जो बैक्टीरिया के समान हैं, बैक्टीरिया जो है ना, कभी कभी हमारे शरीर में बैक्टीरिया वायरस बढ़ जाते हैं तो आप क्या कहते हो, एंटीबायोटिक्स, है ना। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है, एंटीबायोटिक्स आप अंदर डालते हो वो हजारों हजारों सैनिकों को भेजने के समान है। जब आप भेजते हैं ये सब सैनिक खड़े हो जाते हैं किसके विरुद्ध है, वो बैक्टीरिया वायरस के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और लड़ाई करते हैं, और दो तीन दिन के लिए आप बुखार होते हैं, वायरल फीवर आता है ना, लेकिन ये सैनिक उनको हरा देते हैं, हरा कर आपके शरीर को तंदुरुस्त बना देते हैं। इस तरह हरिनाम जब भी ऐसा ही है, अभी हरिनाम जब में हम हरिनाम लेते हैं, जब कान के अंदर घुसता है हृदय में प्रवेश करता है तो हृदय में अनेक दुश्मन हैं, जैसे भौतिक इच्छाएं, खास करके भोग और ऐश्वर्य। क्योंकि भोग और ऐश्वर्य से अगर हम प्रसक्त हो जाते हैं तो हमारे समाधि नहीं लगता है, समाधि में हमारा मन नहीं लगता है ना। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, हमारे मन को घुमा कर लेके जाता है माया, हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो भोग का मतलब है इंद्रिय भोग, इंद्रिय तर्पण, खास करके स्त्री पुरुष के आकर्षण से होने वाला भोग है, उसको भोग कहा गया है। और ऐश्वर्य का मतलब है कभी कभी हम आकर्षित हो जाते हैं, बड़े शॉपिंग मॉल को देखो, हे कितना सुंदर है, हाँ हम सोचते हैं, नहीं तो सोना चांदी, बड़ा बंगला, बड़े कार, बहुत पैसा, इन चीज़ों को देखकर हम आकर्षित होते हैं, ये ऐश्वर्य है। तो इस तरह की भोग और ऐश्वर्य की आकर्षण के कारण वो हमारे हृदय में हमेशा नाचते हैं, ये आकर्षण। इसके कारण जब हम हरिनाम लेते हैं हमारे मन बहुत घूमता है, एक स्तर पर स्थित नहीं होता। हम इस दुनिया के अनित्यता को बोल जाते हैं, अनित्यम असुखम लोकम, भगवान बताते हैं ना, इमाम प्राप्त से भगवान बताते हैं कि ये अनित्य लोक है, लेकिन भूल जाते हैं हम उसको। हम सोचते हैं कि ये दुनिया की चीज़ों को स्मरण करते हुए हम धीरे धीरे भूल जाते हैं, भगवान के नाम जो ले रहे हैं मुँह से उसको हम भूल जाते हैं। तो जितना हमारी हृदय भौतिक चीज़ों में डूबा डूबा रहता है, उतना आप जितना भी नाम लो, नहीं तो भक्तों का संग करो, उसका ज़्यादा लाभ नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए, कुछ लोग टेलीविज़न के अलग अलग सीरियल देखते हैं घर में। टेलीविज़न बहुत बड़ा खतरा है, उसको बोला गया है वन नाइट गुरु, ये एक आंक वाला गुरु है इस दुनिया के। क्यों उसको गुरु बोला गया है? क्योंकि जिस जगह पर लोग अपने आल्टर को बिठाते हैं घर में, उधर टेलीविज़न को बिठाते हैं अनेक घरों में। आप देखते हैं सामने सामने पहले के कमरे में उसको बिठा देते हैं, और माँ बाप बच्चे दादा दादी सब लोग बैठकर देखते हैं उसको। तो इस तरह की तरह तरह के गंदे चीज़ों को टेलीविज़न के द्वारा दिखाया जाता है। अभी आप सब लोग भक्त हो, लेकिन भक्त होने के बाद भी आप देखेंगे कभी कभी जब थोड़ा मौका मिलता है थोड़ा थोड़ा टेलीविज़न देख लेते हैं लोग, और उसमें कभी कभी गंदे चीज़ आते हैं। हमको मालूम है कि चार नियम पालन करना चाहिए हमें, मांस नहीं, जुआ नहीं, अवैध स्त्री संग नहीं, नशा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ हैं जिनको हम बोल नहीं सकते कि ये नियम को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। अगर टेलीविज़न में कुछ गंदा सीरियल चल रहा है, अगर आप देख रहे हो, ये चार नियम को तोड़ने के समान है, बराबर है कि नहीं? तो वो चार नियम को तोड़ने के लिए मदद करते हैं आपको, हाँ, इस तरह के सीरियल को देखने से। इस तरह तो इस तरह गंदे गंदे न्यूज़पेपर में तस्वीरें आते हैं, गंदे गंदे किताबें आते हैं मार्केट में। अगर कोई भक्त लोग बोलते हैं कि हमारा दीक्षा हुआ है, हम सोलह माला करते हैं वगैरह बोलते हैं, लेकिन अगर उन चीज़ों में अगर डूबे रहते हैं तो उनका मन कभी भी भगवान की दिव्य भक्ति में लगेगा नहीं, कभी भी जुड़ेगा नहीं। आप देखेंगे कि भौतिक दुनिया की वासना जो है हमको पकड़ कर लेके जाएगा। हमने एक कहानी सुना था कि कैसे इस दुनिया में भौतिक पदार्थों में रमण करने वाला जीव जो है, तुच्छ जीव, वो भौतिक पदार्थों को त्यागने के लिए तैयार नहीं है, वो बहुत आसक्त है। इसके संबंध में हमने एक कहानी सुना, आपने सुना है डंग बीटल, यू नो डंग बीटल,
एक कीड़ा होता है जो विष्ठा गोबर गोबर के ऊपर रहता है।
ये डंग बीटल बताए वो क्या करता है, उसका आदत है कि कहीं भी विष्ठा पड़ा रहे उधर जाकर वो क्या करेगा, थोड़ा विष्ठा को निकालेगा उधर से, और उसको क्या करेगा, उससे एक गोल बनाएगा, और गोल बनाकर घूम 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 कर गोल गोल बनाते रहेगा। कितने लोगों ने देखा है वो कीड़ा को? अनेक लोगों ने देखा है, प्रभु जी हमें देखा, माता जी ने देखा नहीं है उसको घूमता हुआ। वो ऐसे राउंड बनाता रहता है, राउंड 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 बनाकर बनाकर घूमता रहता है, वो ऐसे बैक में घूमता हुआ ऐसे घूमता रहता है। तो उसको बोलते हैं डंग बीटल बोलते हैं। तो ये डंग बीटल ऐसे गंदे विष्ठा के ऊपर जाकर बैठ कर उसको लेकर घूम घूम उसको हाथ से घुमाता रहता है उस गंदे चीज़ को। इस तरह बताया गया कि ये भौतिक दुनिया के जो पदार्थ जो हैं, ये सब पांच महाभूतों से बनाया गया है ना, भूमि रापो अनिल वायु काम। लेकिन आधुनिक दुनिया के जब सब तरह के ऐशाराम जो हैं वो किससे बनाए गए हैं? सब पांच महाभूतों से बनाया गया है। हम आमने सामने जो भी देखते हैं सारे दुनिया में तरह तरह की सुख सुविधा ऐशाराम वगैरह, और हमने बताया भोग और ऐश्वर्य इन दोनों के बारे में। इन दोनों से होने वाला आकर्षण जो है वो भौतिक आकर्षण है, और भौतिक आकर्षण का नतीजा क्या है, हमारे हृदय में एक तरह का वासना उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इन चीज़ों की ओर तृष्णा जो है वो बढ़ता जाता है। देखिए श्लोक में एक शब्द है तृष्णा, देखा ना आपने, वो तृष्णा जो है बढ़ता जाता है। भौतिक पदार्थों को जितना भोग करो उतना ही ज़्यादा तृष्णा बढ़ता जाता है। तो ये जो डंग बीटल क्या करता है, विष्ठा को निकाल कर गोल गोल घूमता है, इस तरह हम भी इस दुनिया के भौतिक पदार्थों को लेकर घूमते घूमते रहते हैं, इस तरह बताया गया है। तो एक दिन ऐसे हुआ कि कुछ 8-10 सैनिक लोग आए थे उधर उस गांव में, और वो लोग गीत गाया, शराब पिया, घोड़े के साथ आए थे, खाया पिया सोया उन्होंने, और अगले दिन सुबह उठकर वो सब चले गए उधर से। लेकिन वो लोगों ने शराब पिया था और उनका जो घोड़ा था, घोड़ा उसने थोड़ा विष्ठा की थी उधर, तो वो भी पड़ा था ऐसे। तो एक डंग बीटल जिनके बारे में हम बोल रहे थे उसने देखा, बहुत बड़ा विष्ठा पड़ा था उधर, तो तुरंत उसको अभी काम मिल गया, अभी भागा उधर जाकर उसके ऊपर धीरे धीरे घूमकर जाकर बैठने लगा। देखे कि वो फ्रेश वो घोड़े का विष्ठा था, उसके ऊपर बैठ कर वो निकालने लगा घुमाने के लिए इस तरह। लेकिन उस विष्ठा के ऊपर थोड़ा शराब भी पड़ा था उधर, जिसके कारण वो बहुत इंटॉक्सिकेट
नशीला,
हाँ नशीला हो गया वो, उसके अंदर एक तरह का नशा आ गया, क्योंकि उसको उसका गंध जब उसके नाक के अंदर गया, उसके अंदर इस तरह का एक तरह का नशीला हो गया वो। इस तरह बताया जाता है कि हम भौतिक पदार्थों को जब हम भोग करने के लिए प्रयत्न करते हैं, साथ साथ हम नशे में भी डूब जाते हैं। जैसे शंकराचार्य बताते हैं, ये ता मांसवा साधि विकार मनसि विचिंत्य वारम वारम, वो बताते हैं कि इस भौतिक दुनिया के जो आकर्षण है, स्त्री पुरुष का आकर्षण और भौतिक प्रलोभन का आकर्षण जो है दुनिया के, ये सब जो हैं, ये सब मांस हड्डी इस तरह के गंदे चीज़ों से बनाए गए हैं, और इस भौतिक पदार्थ भी पांच महाभूतों से बनाए गए हैं, और जीव जो है ये इस दुनिया का नहीं है, ये परलोक भगवत धाम से आया है, ये शुद्ध है जीव, और ये भौतिक पदार्थों के पीछे भाग दौड़ करके करके इसको आनंद मिलने वाला नहीं है। उसका असली आनंद दिव्य चीज़ों में मिलेगा उसको, जैसे भगवान के दिव्य नाम में, भगवान के दिव्य रूप गुण लीला, इन चीज़ों में उसको दिव्य आनंद प्राप्त होगा। जितना हम उन दिव्य चीज़ों को छोड़कर हम भौतिक चीज़ों के पीछे डंग बीटल के समान पड़े हैं, उतना हमें दुख ही दुख होगा, ऐसे बताते हैं। तो एक श्लोक बताते हैं कुलशेखर, सत्यम ब्रवीमि मनुजा स्वयमोर्द्वबाहुर यो यो मुकुंद नरसिंह जनार्दनेति जीपो जपत्यनुदिनं मरणे रणे वा पाषाणकाष्ठ सदृशाय ददात्यभीष्टम। वो बताते हैं, हे दुनिया के लोगों, वो बुलाते हैं कुलशेखर, आओ इधर, सत्यम ब्रवीमि मनुजा, मैं आपको सत्य बताऊंगा, बताते हैं स्वयंमूर्त बाहु में दोनों हाथों को ऊपर करके, मैं सत्य को बताता हूँ आपको, सुनो। जो व्यक्ति मुकुंद नरसिंह जनार्दन इस तरह के दिव्य नामों का उच्चारण करते हैं, जीवो जपति अनुदिनम का मतलब है रोज जो भगवान के नाम को जपते हैं, वो बताते हैं पाषाण काष्ठ सदृशाय ददाति अभीष्टम। जो इस दुनिया के भौतिक प्रलोभन के पीछे जो हम पढ़े थे पहले, वो सब भौतिक प्रलोभन कैसे हो जाएगा आपको, ये एक पत्थर नहीं तो एक लकड़ी के समान हो जाएगा वो। पाषाण काष्ठ सदृशाय ददात्य अभीष्टम, और आप उनको छोड़ दोगे। जिस तरह ध्रुव महाराज भगवान के पास गए थे, भगवान का दर्शन मिलते ही उन्होंने अपने सब भौतिक इच्छाओं को त्याग दे दिया, इसे इस तरह आप त्याग दोगे, इस तरह बताते हैं। ये भगवान के नाम का उच्चारण करने का महत्वता है, इस तरह बताते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि हम तो रोज जपते हैं अनुदिनम, हमें क्यों भौतिक इच्छाएं कम नहीं होते, हमारे हृदय में क्यों भौतिक वासनाएं कम नहीं होते, कारण क्या है, हम नाम को कान के अंदर घुसने ही नहीं देते हम, मुंह से कभी कभी निकलता है, कभी निकलता भी नहीं है, सो जाते हैं हम, हरे बोलते बोलते सो जाते हैं। अगर सोते नहीं हैं, जागे हैं, तो नाम तो लेते हैं, लेकिन क्या है, कान के अंदर घुसता नहीं, कान के पास जब जाता है दूसरे विचार में मन डूबे रहता है, तो नाम कहीं और चला जाता है। इसलिए अंदर ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये एंटीबायोटिक अंदर जाकर काम करने के लिए हम छोड़ते नहीं उसको, डॉक्टर ने दवाई दे दिया है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, दवाई को हम लॉकर में रखकर लॉक कर दिया हमने, उसको काते नहीं है दवाई को, ये समस्या है। तो ये डंग बीटल ने क्या किया, उष्ठा के ऊपर बैठ कर वो इस तरह मदमत्त होकर वो उसको रोलिंग करने लगा ऐसे, वो गंदे उष्ठा को। इतने में उधर एक बहुत बड़ा हाथी आया उधर, तो हाथी का जो नाक बोलते हैं ना, नाक
सूंड,
सूंड, हाथी का सूंड जो होता है ना वो बहुत तीक्ष्ण होता है, कुछ दुर्गंध सुगंध आता है तो तुरंत वो जान जाता है। तो हाथी ऐसे आ रहा था रोड में, जब उसने देखा कि दुर्गंध आ रहा है, तुरंत उसने क्या किया, अपने सर मुड़कर उधर से दूसरी दिशा में वो जाने लगा। वो इसको देखकर डंग बीटल ने चिल्लाया, अरे मूर्ख हाथी, मेरे से क्यों इतना डरते हो, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो आओ हम लड़ेंगे, ऐसे बोला उसने। तो ये हाथी को किससे तुलना किया गया है, हाथी को ये भौतिक दुनिया की जो दुर्गा देवी की जो शक्ति है उसे तुलना गया है, किया गया है इसे। तो हाथी जब आता, हाथी कितना बड़ा है, ये डंग बिटल कितना छोटा है, लेकिन उसने चुनौती दिया किसको, हाथी को। ऐसे तो हाथी ने सुना, क्योंकि हाथी का कान भी बहुत तीक्ष्ण रहता है, नाक भी और कान भी दोनों, हे इतना छोटा कृमि जो, उसने क्या बोला मेरे बारे में, तो इस तरह वो उसकी ओर आने, उसकी वो उस दिशा में आने लगा, वो पास में मेरे पांव, मेरे पैर उठाकर दबाऊंगा जमीन में, ये तो चटनी बन जाएगा ये, और ये मुझे मजाक उड़ा रहा है। इस तरह क्रोधित हो गया हाथी, उत्तेजित हो गया, लेकिन जब भी पास में निकट गया, हाथी ने देखा कि अरे ये तो विष्ठा के ऊपर बैठा है, इसके ऊपर मैं पाए पैर रखूंगा तो मैं भी गंदित हो जाऊंगा, गंदा हो जाऊंगा, है ना, क्या किया जाए, सोचा इसे हाथी ने। तो उसको एक अच्छा उपाय मिल गया, तुरंत ऐसे अबाउट टर्न लिया उसने मुड़कर, तो बहुत बड़ा विष्ठा का उसके ऊपर डाल दिया, धड़ाल ऐसे। इस तरह क्या हुआ हमारे डंग बीटल का, डंग बीटल हमेशा क्या करता, विष्ठा को लेकर घुमाता रहता है, और विष्ठा से ही मर गया वो, विष्ठा के अंदर ही मर गया वो। इस तरह इस भौतिक दुनिया में लोग ये भौतिक चीजों को लेकर, भौतिक पदार्थों में रमण करने के लिए पूरा जीवन बिताते हैं, और उन भौतिक पदार्थों के बीच में ही मर जाते हैं, और अपने को ऊपर उठाते नहीं, दिव्य नामों के द्वारा, रूप गुण लीला इत्यादि के द्वारा अपने दिव्य, अपनी चेतना को दिव्य बनाते नहीं हैं। लेकिन हम सब भाग्यशाली हैं, हमें इस आध्यात्मिक जीवन में इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला है प्रभुपाद जी के किताबों के द्वारा। लेकिन ये प्राप्त होने के बाद भी अगर हम हट करेंगे कि मैं दिव्य नामों को सुनूंगा नहीं, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ज़्यादा पहुंच नहीं पाएंगे हम ऊपर। तो इधर मैं कुछ समय के लिए ये बात बताना चाहूँगा कि भौतिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन एंड मटेरियल साउंड वाइब्रेशन,
भौतिक शब्द ध्वनि और आध्यात्मिक ध्वनि में क्या फर्क है।
इफ यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन इन योर लाइफ, यू विल नॉट टेक द होली नेम्स चीपली।
अगर आपको ध्वनि के महत्व को जान जाएंगे तो आप इसको सस्ते से नहीं लेंगे।
फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल नो दिस वर्स, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो, यू नो दैट वर्स,
जैसे कि आप जानते हैं अत्याहार प्रयासश्च जो श्लोक है।
नाउ अत्याहार मीन्स डिजायर टू एंजॉय द थिंग्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड मोर एंड मोर।
अत्याहार का मतलब है भौतिक जीवन की चीजों को ज्यादा ज्यादा भोग करना।
एंड प्रयास मीन्स एंडेवरिंग वेरी हार्ड फॉर अचीविंग दम।
और प्रयास का मतलब इसके लिए काफी कठिन मेहनत करना।
एंड प्रजल्प मीन्स इन्फॉर्मेशन और टेक्निक्स हाउ टू गो अबाउट एंजॉइंग द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड।
और प्रजल्प का मतलब है ये जानना कि दुनिया के चीजों को कैसे ज्यादा ज्यादा भोग करने के लिए जाया जा सके।
लाइक फॉर एग्जाम्पल, मिलियनर्स राइट बुक्स ऑन हाउ टू बिकम रिच,
जैसे कि करोड़पति लोग एक पुस्तक लिखते हैं कि कैसे अमीर बना जाए।
तो आपने सुना है ये श्लोक, अत्याहार प्रयास प्रजल्प, इसमें देखते हैं कि अत्याहार का मतलब है भौतिक पदार्थों को भोग करने की इच्छा, प्रयास का मतलब है बहुत कठोर परिश्रम करना, प्रजल्प का मतलब है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन टेक्निक्स सब मिलता है भौतिक किताबों में, भौतिक न्यूज़पेपरों में हमें जो प्राप्त होता है वो है। तो इन चीज़ों के बीच में जब हम अपनी चेतना को, चेतना को हम फंसा देते हैं, अपनी चेतना को हम देखते हैं कि उसमें हम डूब जाते हैं, और कभी कभी मंदिर आते हैं, भक्तों को मिलते हैं, तो आध्यात्मिक साउंड जो है उसका ज़्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता। तो ज़्यादा हमारे हृदय, जिधर हमने हृदय को दिया है वो चीज़ में हमारे हृदय डूबे रहता है। लेकिन आप दो उदाहरण हम बता सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति के हृदय के अंदर भक्ति में आगे बढ़ने की भी इच्छा है, लेकिन अगर वो टेलीविजन देखते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, इस भौतिक दुनिया के पदार्थों में लगे रहते हैं, तो क्या होता है, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा होने के बावजूद भी वो भौतिक चीज़ों में डूबे रहते हैं। आप देखेंगे कि उनकी इच्छा जो है वो तीव्र नहीं बनता है कभी, क्योंकि क्या होता है, द बैकग्राउंड इज मटीरियल लाइफ। सो यू मे हैव अ कृष्णा मोटिव, बट इफ यू एनवलप योर सेल्फ विद मंडेन साउंड वाइब्रेशन, देन यू विल ऑलवेज रिमेन सबमर्ज्ड इन मटीरियल वर्ल्ड।
क्योंकि ये जो हमारे पीछे जो है वो भौतिक जीवन है, अगर हम इसको अपने चारों तरफ लपेटे रहेंगे तो हम हमेशा इसी में फंसे रहेंगे।
ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, यू मे हैव अ कृष्णा मोटिव, बट इफ यू आर सराउंडिंग योर सेल्फ विद मटीरियल साउंड वाइब्रेशन, यू कैन नेवर अपलिफ्ट योर सेल्फ।
आपके अंदर कृष्ण के पाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने आप को चारों तरफ भौतिक ध्वनि से आच्छादित कर लेंगे तो आप कभी भी कृष्ण को नहीं पाएंगे।
ऑन द अदर हैंड, इफ यू हैव अ मटेरियल मोटिव बट यू समहाउ आर सराउंडेड बाय स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन, यू विल एडवांस वेरी फास्टली टुवर्ड्स कृष्णा।
दूसरी तरफ अगर आपकी इच्छाएं भौतिक है, लेकिन अगर आपके चारों तरफ आध्यात्मिक ध्वनि मौजूद है तो आप आध्यात्मिक प्रगति बहुत तेजी से करेंगे।
उदाहरण के लिए देखिए, मैं बता रहा था कि अगर आपके अंदर कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा एकदम तीव्र है, लेकिन आपके आमने सामने भौतिक वातावरण बहुत है, फिर भी आप उन वातावरणों से प्रभावित नहीं होंगे। और आप देखेंगे, उदाहरण में बताता हूँ, एक व्यक्ति था स्पेन में, उसको इच्छा थी कि मैं अभी स्पेन में आया हूँ बिजनेस करने के लिए, लेकिन इधर के लोग तो बहुत निपुण हैं बिजनेस में और मैं तो धोखा खाता रहता हूँ, इसलिए अच्छा है कि मैं स्पैनिश भाषा में सीख लूँ, इस तरह उसकी इच्छा थी। तो वो गया, इधर उधर घुमा, एक बार हमारे हरे कृष्ण भक्त लोग उधर खड़े थे एयरपोर्ट के पास, तो उनके पास गया वो, और वो लोग किताब वितरण कर रहे थे। पूछा उसने, स्पैनिश में कुछ किताब है, ऐसे पूछा उसने। तो वो लोग बोले, हाँ हमारे पास सब किताब स्पैनिश में ही है। तो उन्होंने दिखाया सब किताब, उसने बोला, नहीं नहीं मुझे स्पैनिश सीखने के लिए किताब चाहिए। तो उन्होंने बोला, हमारे पास कृष्णा बुक है स्पैनिश में, आप इस किताब को ले लो और इसको पढ़ते पढ़ते तुमको स्पैनिश भी सीख लोगे तुम, साथ साथ तुमको इसमें अनेक कृष्ण के संबंध में कथाएं दी गई हैं, इसको तुम पढ़ो, आपको भी लाभ होगा, अपने बच्चों को भी लाभ होगा। और तुरंत उसके मन में एक आइडिया आया, अरे मेरे बच्चे को भी कुछ कहानियाँ बताना था मुझे, अगर इसको ले लूँगा तो मेरा काम भी हो जाएगा, मेरे बच्चे के लिए भी काम में आएगा। इस तरह सोच कर एक बड़ा स्पैनिश की कृष्णा किताब को उसने ले लिया, घर गया और पढ़ने लगा। और ऐसे पढ़ते पढ़ते आधा किताब जब पूरा किया उसने, उसके हृदय में जो इच्छा था स्पैनिश सीखने की वो सब चला गया, और उनके मन में जो बहुत पैसा बनाने की, भौतिक जीवन में प्रगति करने की जो बड़ी इच्छा थी वो सब गया, और उसको भी भक्त बनने की इच्छा हुई, अपने बच्चों को भी सिखाया, और पास के मंदिर में गया, वो आकर हमारे हरे कृष्ण भक्तों को मिला और मंदिर में रेगुलर जाने लगा और दीक्षित भक्त बन गया वो। तो उसने बोला कि मैं भौतिक इच्छा, मेरे अंदर भौतिक मोटिव था, भौतिक इच्छा था, लेकिन मैंने क्या किया, मेरे चेतना पूरा डूबा हुआ था कृष्णा बुक में, इसके कारण क्या हो गया, मेरे भौतिक जो पहले एक मोटिव था, भौतिक मोटिव, व्हाट इज अ मोटिव,
हेतु,
हेतु, भौतिक हेतु था वो खत्म हो गया, उसने बोला। तो भौतिक हेतु होने के बावजूद भी उसने अपने सारे चेतना को किसमें डूबा रखा, उसने डूबा कर रखा कृष्ण बुक पढ़ने में, ऐसे। लेकिन अगर हम बोलेंगे हमारा हेतु आध्यात्मिक हेतु है, लेकिन हम अपने को भौतिक चीज़ों में डूबा कर रखते हैं, तो हम ज़्यादा हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है, ये साउंड वाइब्रेशन जो होता है ना वो बहुत शक्तिशाली होता है, कोई भी ध्वनि हो, चाहे भौतिक हो आध्यात्मिक हो कुछ भी हो, उसके अंदर बहुत शक्ति रहता है। जैसे प्रभा उदाहरण देते हैं, कोई आदमी सो रहा था अपने घर में, मिस्टर जॉन, उसके पड़ोस के घर में दूसरा आदमी था, उसने खिड़की को खोला ऐसे ही और देखा इसके घर के अंदर तो मिस्टर जॉन सो रहा है, लेकिन एक चोर आ गया हाथ में बड़ा चक्कू लेकर, वो ऐसे जॉन को मारने ही वाला था वो। तुरंत वो आदमी ने क्या किया, चिल्लाया उधर से, मिस्टर जॉन वेक अप, उठो, कोई तुमको मारने वाला है। तो तुरंत जॉन कूद पड़ा अपने बिस्तर में, तो तुरंत चोर जो हो भाग गया उधर से। तो प्रभु जी बोलते हैं देखो ये तो दूसरे घर में था, वो दूसरे घर में था, इधर से चिल्लाया उसने उधर, तो सोने वाला जान भी वो उठ गया वो तुरंत। अभी आप एक चोर का एक सुंदर तस्वीर बनाकर दिखाओ जान को, क्या देख पाएगा वो? वो तो सो रहा है, कैसे देखेगा वो? देख नहीं पाएगा। तो कि दूसरा किसी भी हमारे इंद्रिय नहीं है जो इतना शक्तिशाली है हमारे कान जैसे। तो कान से क्या होता है, जब ध्वनि सुनता है अंदर प्रवेश करता है, वो सोने वाले सुप्त आत्मा को उठा सकता है वो। तो इस भौतिक दुनिया में हम सिनेमाओं को देखते हैं, उसमें बड़े हीरो हीरोइन को देखते हैं, वो तरह तरह की भूमिका लेकर वो अलग अलग कहानियों को सिनेमा के रूप में बनाते हैं, और हमें इच्छा होता है स्टंट देखने के लिए, स्टंट हम देखते हैं कभी कभी। व्हाट इज रोमांस, रोमांस प्रेम है काम वासना है। तो स्त्री पुरुष की चीजें हम देखते हैं सिनेमाओं में, इसको देखने से क्या होता है, हमारे अंदर तृष्णा बढ़ता है, लेकिन इसमें हमें रुचि क्यों होता है वो कारण प्रभुपाद जी बताते हैं। तो चाणक्य का एक और एक श्लोक है, वो बताते हैं प्रातः द्योत प्रसंगेन माध्यान स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर प्रसंगेन कालौ कालो गच्छति धीमताम। वो बताते हैं कि बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, सुबह वो ताश खेलते हैं, दोपहर को स्त्रियों के साथ समय बिताते हैं, और रात्रि को वो चोरों के साथ समय बिताते हैं, ये बुद्धिमान लोग हैं ऐसे बताते हैं। इसका मतलब क्या है, ये चाणक्य, इन इंग्लिश इट इज कॉल सैटायरिक, सैटायर वी कॉल इट, मीनिंग इज व्हाट, प्रातः द्यूत प्रसंग का मतलब है सुबह आपको क्या पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़ना चाहिए जिसमें द्यूत प्रसंग के संबंध में वर्णन आता है, और मध्यान्ह को क्या पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए जिसमें एक स्त्री मंत्रा की ईर्ष्या भावना के कारण पूरा रामायण होता है, इसलिए वो पढ़ना चाहिए, नहीं तो कई के इसलिए वो पढ़ना चाहिए। और रात्रौ चौर प्रसंग है ना बोलते हैं, रात्रि को चोर, कौन है चौर प्रसंग है ना, तो माखन चोर कृष्ण, इसलिए रात्रि को आपको भागवत पढ़ना चाहिए बोलते हैं। कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमान लोगों को ऐसे समय बिताना चाहिए बोलते हैं, महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो और भागवत पढ़ो, इस तरह समय बिताओ बोलते हैं। कारण क्या है, क्योंकि हमारे अंदर हमेशा इच्छा होता है कि जब कुछ पॉलिटिक्स होता है तो सब लोग सोचते हैं कि अभी किसको वोट मिलने वाला है, ये पार्टी को मिलेगा, वो पार्टी को मिलेगा, है ना, उनको इच्छा होता है। इस तरह अगर आप पढ़ेंगे रामायण पढ़ेंगे, उधर आप सुनेंगे ये रामचंद्र भगवान की पट्टाभिषेक होने वाला है, तो पट्टाभिषेक होने वाला तो क्या है, सब लोग ऐसा पता चलता कि इतना भीड़ था, सब सड़कों में सब लोग राम की गुणगान कर रहे थे, तो उधर ऊंट हाथी घोड़े वो सब ऐसे एक्वाटिक, जैसे समुद्र में आप तिमिंगलों को देखते हैं, इस तरह वो बीच में वो चल रहे थे, ऐसे इतना बड़ा भीड़ था लोगों का। तो मंत्रा बाहर आई, अपने ऊपर से देखी, ऊपर के माले से देखा उसने, अरे इतना भीड़ होने के क्या कारण है, क्या होने वाला है, अभी क्या उत्सव होने वाला है। तो किसी ने बोला उसको, मालूम नहीं तुमको, अभी भगवान रामचंद्र की पट्टाभिषेक होने वाला है कल सुबह, सुना उसने, तुरंत आया, आई वो किसके पास, कैकेयी के पास, कैकेयी तुमको मालूम है अभी पट्टाभिषेक होने वाला है राम की, तुमको किसी ने बोला नहीं? तो उसने क्या किया, अब कैकेयी ने सुना, इतना खुश होगी, ओ मैंने सुना नहीं अभी तक, हे सखी तुमने इतना अच्छा संदेश लाया मेरे पास, तो अपने ही नेकलेस को लेकर उसको दिया, ये ले लो ये नेकलेस। तो मंत्रा ने वो नेकलेस को लेकर क्या किया, दूर फेंक दिया उसको, और बोला उसने कही कि अरे मूर्ख तुमको मालूम नहीं कितना बड़ा कतरा तुम्हारे सामने कड़ा हो गया है, अगर राम राजा बनेगा तो तुम्हारा बेटा जो है भरत उसको क्या होगा, उसका नौकर बनना पड़ेगा राम की, कितना बड़ा नुकसान होगा तुमको मालूम नहीं। तो कही कि ने बोला इसमें क्या गलती है, भरत तो हमेशा राम की सेवा करना चाहिए, वो तो दास है उसकी, इसमें क्या समस्या है। तो तो मंत्र ने बोला तुम्हारी दिमाग काम नहीं करता, तुम समझ नहीं सकती। देखो अगर राम राजा बनेगा ना, कौशल्या जो है वो दशरथ की बहुत निकट हो जाएगी और दशरथ उसको ज़्यादा प्रेम करेंगे और तुम्हारी ओर कोई भी नहीं देखेंगे और तुम कौशल्या की दासी बन जाओगे और भरत राम की दास बन जाएगा। इस तरह आप लोग घर इस बड़े महल में नौकर चाकर के समान बन जाएंगे और आप लोगों को कोई परवाह नहीं करेंगे। और किसको पता अगर हो सकता है कि कल राम भरत को भी कुछ दंड भी दे सकता है, कहीं और भगा सकता है उसको। देखो इसके कारण दशरथ ने क्या किया, भरत को बाहर भेजा है राम को सिंहासन में बिठाने के लिए, यही कारण है। इस तरह मंत्रा ने बोला उसको। जब कौशल्या के बारे में बोला मंत्रा ने, तुरंत कैकेयी के हृदय में क्या हो गया, ईर्ष्या भावना उत्पन्न हो गया। अरे कौशल्या भी रानी है, मैं भी रानी हूँ, दशरथ उसके ऊपर क्यों ज़्यादा प्रेम करेंगे, मेरे ऊपर क्यों नहीं करेंगे, इस तरह सोचकर ईर्ष्या हो गया उसके अंदर, है ना। तो जब इस तरह की कथा सुनते हैं कि भाई भाई हैं उनके बीच में अभी कुछ समस्या है, तो सब लोग सुनना चाहते हैं, है ना। सब लोग चाह क्या हुआ उसके आगे, क्या हुआ अभी, है लोग देखना चाहते हैं। अभी महाभारत में भी ऐसा ही है। आप बोलते हो हम सुनते हैं कि 5 भाई हैं पांडव हैं और 100 भाई हैं वो कौरव हैं और दोनों के बीच में समस्या था, तो सब लोग सोचते हैं क्या समस्या था, बोलो बोलो, है क्योंकि लोगों को पॉलिटिक्स अच्छा लगता है। और जब आप सुनते हैं उसको, और इतना ही नहीं महाभारत में बताया गया है कि समस्या ही इतना ही नहीं हुआ, उनके बीच में द्यूत क्रीड़ा हुई, उसके बाद क्या हुआ, द्रौपदी जो है उसका अपमान होने वाला था, सभा के बीच में लाया उसको। तो सब लोग अगर कुछ स्त्री के संबंध में है तो बहुत उत्साहपूर्वक सुनते हैं क्या हुआ उसका, है द्रौपदी का क्या हुआ, सब लोग सुनते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे महाभारत आगे जाता है जाता है जाता है, ये ऐसा प्रसंग आता है जिधर व्यास जी बताते हैं कि अभी कौरव और पांडवों के बीच में बड़ा घोर युद्ध होने वाला है। और युद्ध के बारे में जब हम सुनते हैं तुरंत हमें प्रश्न उठता है कौन जीतेगा, है ना। आपको कौन जीतेगा मालूम होना चाहिए तो आगे पढ़ो, और आगे क्या रखा गया है, भगवद्गीता है। तो भगवद्गीता पढ़े बिना आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे पुराण और शास्त्र जो हैं उनके अंदर भी ऐसे घटनाओं के बारे में वर्णन है, ईर्ष्या है, भाई भाई के बीच में झगड़ा है, नहीं तो कुश्ती है, उधर भी रोमांस भी है, रोमांस है। जैसे कुछ दिनों के पहले हम पढ़ रहे थे कि ये जरासंध जो है 17 बार भगवान कृष्ण ने उसको हरा दिया, लेकिन 18वां बार जब जरासंध आया तो भगवान ने परवाह नहीं किया उसकी, क्योंकि भगवान को और एक मुख्य चीज़ था, क्या था वो, रुक्मिणी जी का एक खत आया था उनको। इधर हम पढ़ते हैं भागवत में रुक्मिणी जी के बारे में, रुक्मिणी लव लेटर टू कृष्णा, रुक्मिणी ने एक प्रेम का पत्र लिखा था कृष्ण को, उसके संबंध में हम पढ़ते हैं भागवत में। तो रुक्मिणी अपने बचपन अवस्था से जब महल में रहती थी अनेक ऋषि मुनि आते थे, भगवान कृष्ण के बारे में वो बताते थे, उनकी लीलाओं के बारे में, रूप गुण लीला इत्यादि के बारे में वर्णन करते थे। वो सुनती रही सुन सुनकर उनके हृदय में ऐसे दिव्य प्रेम जागृत हो गया कृष्ण की ओर। उन्होंने निर्णय कर लिया अपने हृदय में कि मैं कृष्ण से ही शादी करूंगी, इस तरह। तो सबको मालूम था भीष्मक जो उनके पिता हैं वो भी बहुत खुश थे, वो रुक्मिणी को देने के लिए तैयार थे कृष्ण को। और उनके 5 भाई थे, रुक्मी, रुक्मरथी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, और रुक्मकेश, और रुक्ममाली, ऐसे 5 भाई थे। और सब सारे भाई भी खुश थे कि कृष्ण के साथ उसका शादी होगा ऐसे। लेकिन एक बड़ा भाई जो था रुक्मी, उसने बोला कि नहीं नहीं ये रुक्मिणी का शादी होगा किसके साथ, शिशुपाल के साथ, ऐसे उसने निर्णय ले लिया था। तो रुक्मिणी बहुत अफसोस करने लगी, बहुत रोने लगी अपने आप, लेकिन उसने समझा कि ये कूटनीति राजनीति जो होता है राजाओं के बीच में, इसमें मैं पढ़ नहीं सकती और इन लोगों को मैं समझा नहीं सकती, इसलिए मुझे तुरंत कुछ एक्शन लेना चाहिए मुझे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे। जरा अपने कमरे में जाकर उसने एक कत लिखा भगवान को। उसमें उन्होंने लिखा, हे भगवान, मैंने आपके नाम रूप दिव्य गुण लीला इत्यादि को सुना है मैंने, और मैंने पहले से निर्णय ले लिया कि आप ही मेरे पति हो, और मैं इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को मैं देख नहीं सकती उस रूप में, और अनेक राजा लोग मेरे पीछे पड़े हैं, जैसे शिशुपाल और शाल्वा, ऐसे अनेक राजा हैं, और मेरे रिश्तेदार उनके साथ मेरी शादी करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह गरुड़ जी ने राक्षसों के बीच में आकर अमृत का जो कलश था उसको उठा कर लेके गया, इस तरह आप भी तुरंत आकर मुझे उन लोगों के बीच में से पकड़ कर लेके जाइए, क्योंकि आप कौन हो, आप एक सिंह के समान हो। ये सिंह का शिकार होता है ना, वो सिंह के लिए है, लेकिन अगर लोमड़ी सियार ये सब आसपास में आकर उसको खाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप आओ, आप सिंह के समान, आप मुझे लेके जाओ। ऐसे उन्होंने लिखा, हे भगवान, आप इतने पवित्र हो कि जो शिवजी है अपने जटा के ऊपर आपके पदकमलों को धोने वाला पानी जो है गंगा, उसको अपने सर के ऊपर वो लेते हैं, क्यों? अपने ही तमोगुण को खत्म करने के लिए, ऐसे बताती है। यस्यांग्री पंकज रजस्नपनम महांतो वांचन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यैहि यर्ह्यम्बुजाक्षनलभेयभवत् प्रसादम् जह्यामसून व्रतकृशान् शतजन्म विस्यात्। हे भगवान, वो बोलती है, हे भगवान, जिनके आंखें कमल के पंखुड़ियों के समान हैं, यर्ह्यम बुजाक्ष न लभेय भवत् प्रसादम्, अगर आपका प्रसाद, आपका कृपा मुझे प्राप्त नहीं होगा तो मैं अपने जीवन को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। अगर आप सोचते हो कि मैंने उतना तपस्या नहीं किया है आपको प्राप्त करने के लिए, तो बोलते कि मैं सैकड़ों जन्म में तपस्या करने के लिए मैं तैयार हूँ, और आप बोलो किस तरह का तपस्या मुझे करना चाहिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे नकारना नहीं, आप मुझे स्वीकारिए। इस तरह उन्होंने कत लिखा कृष्ण को। तो लेकर उन्होंने सोचा कि किसको इस कत, किसके द्वारा मैं भेज दूँ इस कत को, तो उन्होंने सोचा कि एक ब्राह्मण को उन्होंने चुना, और ब्राह्मण को बुलाया और बोला कि इसको जितना जल्दी हो सकता है कृष्ण के पास पहुंचाओ, और मुझे इसकी जवाब चाहिए। तो उनका शादी होने के पहले भेजा था उन्होंने। तो ब्राह्मण लेके गया वो कथ कृष्ण के पास लेके गया। अभी जब ब्राह्मण गया, ऐसा वर्णन है भागवत में, ब्राह्मण को भगवान कृष्ण ने कैसे स्वागत किया और किस तरह उनके साथ बर्ताव किया, बहुत सुंदर वर्णन है। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने पढ़ा रुक्मिणी की खत को, वो बहुत खुश हुए, और भगवान ने निर्णय ले लिया, मैं ज़रूर जाऊंगा कौंडिन्यपुर। और रुक्मिणी इतनी बुद्धिमान, बुद्धिमता उनके अंदर इतना बुद्धिमता थी कि वो भी एक राजा की पुत्री थी, इसलिए उन्होंने बोला कृष्ण को, अगर आप महल के अंदर आओगे, संभावना कि मारा मारी जब होगा, झगड़ा वगैरह होगा, उस झगड़े में शायद हो सकता है कि किसी दूसरे स्त्रियों का भी कुछ दुर्घटना हो सकता है, वो भी मर जाएंगे उसमें, इसलिए मैं ऐसा करूँगी कि मैं दुर्गा के मंदिर की ओर जब मैं जाऊँगी, मैं जाते समय नहीं तो आते समय आप मुझे तुरंत आप पकड़ कर आप लेके जाइए, ऐसे उन्होंने एक सुझाव दिया था उनको। तो तरह तरह के विवाह हैं, एक है गंधर्व विवाह बोला गया शास्त्र में, गंधर्व लव मैरिज बोलते हैं उसको, गंधर्व विवाह बोलते हैं, और सर आसुरी विवाह बोला गया है। आसुरी विवाह का मतलब है क्षत्रिय लोग कभी कभी, जैसे आप सुनते हैं सांबा और लक्ष्मणा के संबंध में सुनते हैं, ऐसे ही शादी है कि एक अनेक राजा लोग आते थे शादी वगैरह करने के लिए, स्वयंवर होता था, कभी कभी एक राजा आकर एक स्त्री को लेके जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो भाग जाएंगे, वो दूसरों के साथ सबके साथ झगड़ा करना होगा उनको, और झगड़ा में कुछ लोग मर भी जाएंगे कभी, और अगर झगड़ा करके सबको जीत लिया उन्होंने, तभी वो उस स्त्री के साथ वो शादी कर सकते हैं, ऐसे इसको आसुरी विवाह बोलते हैं। तो उन्होंने बुलाया था इस तरह, क्योंकि उनकी इच्छा थी कृष्ण से शादी करने के लिए। तो उस समय जैसे मैंने बोला कृष्ण जरासंध आया था लड़ाई करने के लिए, उसी समय कृष्ण को जाना था उधर कौंडिन्यपुर, तो कृष्ण ने जरासंध को परवाह नहीं किया, वो ऐसे ही चलने लगे दूसरी दिशा में, और जरासंध चिल्लाने लगा, हे कृष्ण किधर जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो, कायर, ऐसे चिल्लाने लगा वो, लेकिन कृष्ण ने परवाह नहीं किया उसकी, क्योंकि ऐसा बताया गया कि मूर्ख लोग जो हैं वो सोचते हैं कि भगवान डरपोक हैं, क्योंकि जरासंध ने कितना 23 हाँ मच 23 हाँ
17
नो ही ब्रॉट 23 अक्षौहिणी 23 अक्षौहिणी 23 अक्षौहिणियों को लाया था उनके साथ जरासंध ने, तो कुछ लोग सोचते हैं कि शायद भगवान डर गए उसके साथ इसलिए भगवान भागने लगे उधर से, लेकिन भक्तों को मालूम है कि भगवान का नाम क्या है, रणछोड़, रणछोड़ का मतलब है रण को छोड़कर भगवान चले गए, क्यों, दूसरे कारण वैष्णव, क्योंकि वो रुक्मिणी के पास जाने के लिए, रुक्मिणी को लाने के लिए भगवान जाने वाले थे, तो एक बहुत बड़ा पर्वत था जिसका नाम है प्रवर्षण नाम का पर्वत है, भगवान और बलराम जी और दूसरे लोग उधर ऊपर चढ़ने लगे, तो जरासंध ने सोचा कि अभी भगवान और उनके पार्षदों को मैं जला दूँ, इस तरह सोचकर पूरा तेल लगाकर वो आग लगाया वो पूरे पर्वत को, तो भगवान ने क्या किया, कृष्ण और बलराम ऊपर से 88 miles कितना 88
88 मील
हाँ 88 मील ऊपर से भगवान कूद पड़े नीचे भगवान और बलराम, और उनका कुछ फ्रैक्चर नहीं हुआ भगवान का, इतना ऊपर से कूदने के बाद भी, और उधर से चलने लगे भगवान किधर, कौंडिन्यपुर की ओर, और ऐसे कथा चलता है कैसे वो जाकर रुक्मिणी मंदिर में दर्शन किया उन्होंने, और रुक्मिणी रोने लगी क्योंकि भगवान आए नहीं अभी तक, अभी लगता है कि शायद भगवान उससे अप्रसन्न है, तो बहुत सुंदर वर्णन है रुक्मिणी की प्रार्थनाओं का, और उसके बाद जब बाहर आती है रुक्मिणी अपने जो पल्लू बोलते हैं उसको, पल्लू है क्या, पल्लू करेक्ट, पल्लू है ना, हाँ, तो अपने पल्लू को निकाल कर वो उस दिशा में देख रही थी कि क्या भगवान आए हैं कि नहीं, ऐसा बताया जाता है कि जब उसने देखा ऐसे रुक्मिणी की चेहरा जो है ये कमल के फूल के समान था, तो उस समय अनेक राजा लोग थे, बड़े बड़े हाथी और घोड़े के ऊपर बैठे थे और रुक्मिणी के लिए वो इंतजार कर रहे थे, कब आएगी मंदिर से बाहर थोड़ा हम इसकी सुंदरता को देखे, इधर बैठे थे, जब वो अपने पल्लू को निकाल कर भगवान की ओर देखा उन्होंने, तभी अनेक राजा लोग हाथी से नीचे बेहोश होकर गिर गए, तो लेकिन रुक्मिणी ने किसी को परवाह नहीं किया, ऐसे ही देख रहे थे वो, और अंत में देखा उन्होंने कृष्ण भगवान आ गए थे उधर, और कृष्ण आकर उनको लेके बड़ा युद्ध हुआ, भगवान ने बहुत आसानी से जीत लिया सबको, तो अभी हमने आपको क्या बताया, एक लव स्टोरी बताया अभी, लेकिन ये लव स्टोरी सुनने से क्या हुआ, आपका हृदय पवित्र हो गया, तो भगवान के संबंध में हम जो भी सुनते हैं, अगर भगवान मक्खन का चोरी करते हैं, भगवान रुक्मिणी का हरण करते हैं, ये सब सुनने से हमारे हृदय और भी पवित्र बनता है, अगर ऐसे ही एक सिनेमा में आप देखो किसी हीरो हीरोइन का क्या बोलते हैं उसको, लफड़ा बोलते हैं वो बहुत गंदा शब्द है उससे क्या होता है, हमारे हृदय दुर्गंध हो जाता है ना, तो कभी कभी आप मैगजीन में पढ़ते हो ऐसे एक सिनेमा एक्टर हैं वो किसको शादी करने वाले हैं, और वो स्त्री किस पुरुष को शादी करने वाली है, कभी कभी एक एक्ट्रेस का 4-5 शादी हो जाता है, एक को शादी करते हो छोड़ देते हो, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करते रहते हैं ऐसे, और इसको लोग बहुत आतुरता के साथ पढ़ते हैं, और मार्केट में जाओ किताब वगैरह लगाया है कि ऐसे ऐसे एक्टर्स ने चुना है अपने पति को, और कौन है उनका पति, वो पढ़ने के लिए ये किताब खरीदिए, ऐसे तुरंत लोग कहते हैं जितना भी हो 10 रुपया हो 20 रुपया हो खरीदो, देखना चाहिए मैं कौन, क्या लाभ होने वाला है उससे, है क्योंकि दोनों मृत लोग हैं, मरने वाले लोग हैं, कुछ लाभ नहीं होगा, इसके विरुद्ध हमारा मन और भी दूषित हो जाएगा ऐसे। लेकिन अभी कुछ समय के पहले मैं बता रहा था मंत्रा की ईर्ष्या के बारे में, इधर क्या बताया गया, देखिए श्लोक में जो हमने पढ़ा, यत्रेड्यन्ते कथामृष्टा तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरम यत्र भूतेषु नो द्वेगो यत्र कश्चन। हमारे हृदय में होने वाले तृष्णा जो वासना काम वासना है वो प्रशमो यता, वो प्रशम का मतलब है वो धीरे धीरे कमती होता जाएगा और निकल जाएगा वो। और हमारे अंदर ईर्ष्या भावना है दूसरे जीवों के ऊपर, वो ईर्ष्या भावना भी चला जाएगा। ये कारण क्या है इस दुनिया में, अगर एक साधारण पुरुष के बारे में आप सुनो, स्त्री के बारे में सुनो, स्त्रियां जो होती हैं अगर एक स्त्री थोड़ा और ज़्यादा सुंदर है तो ईर्ष्या हो जाते हैं, ये क्यों और ज़्यादा ज़्यादा सुंदर है। इस तरह पुरुषों में अगर कोई पुरुष आपसे थोड़ा ज़्यादा धनी है, आपके पास एक मारुति कार है, उसके पास एक मर्सिडीज बेंस है, तो एक दूसरे को देखते हैं ईर्ष्या करते हैं, अरे ये क्यों बड़ा आदमी ऐसा आ गया बीच में ऐसे। इस तरह स्त्रियों के बीच में अगर कोई और बहुत सुंदर स्त्री आ गई तो सब लोग तो ये किधर से आ गई ऐसे देखते हैं ऐसे। इस तरह ईर्ष्या भावना होता है इस दुनिया में। ये कारण क्या है, आप सोचते हो स्त्रियाँ सोचते हैं कि हम अच्छी तरह सजाएंगे तजाएंगे, अच्छी तरह फेयर एंड लवली सब लगाएंगे तो हम भी सुंदर बन जाएंगे, तो हम भी वो स्त्री जैसे हम सुंदर बनने की संभावना है, इस तरह वो सोचते हैं। इस तरह पुरुष क्या सोचते हैं, मैं भी कमाऊँगा, मैं भी दुबई जाऊँगा, मैं अमेरिका जाऊँगा, कमा कर लेके आऊँगा, और वो व्यक्ति जैसे मैं भी एक दिन मर्सिडीज बेंच खरीदूँगा, मैं भी कुछ करके दिखाऊँगा दुनिया को, इस तरह पुरुष भी सोचते हैं। इसके अगर ईर्ष्या होता है, लेकिन जब भगवान के बारे में कथा सुनते हैं आपकी ईर्ष्या खत्म हो जाता है। कारण क्या मालूम है, कारण ऐसा है कि आपने वेट लिफ्टर के बारे में सुना है ना, कोई 100 पाउंड्स 120 पाउंड 150 पाउंड 200 पाउंड 250 पाउंड बिठाते हैं, लेकिन 250 के ऊपर ज़्यादा कोई नहीं है लोग है? अगर कोई 260 270 कोई उठाएगा भविष्य में है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है हम उनके पास, ये लोगों के साथ भी हम थोड़ा स्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन भगवान जब उठाते हैं कितना वेट उठाते हैं, सारे गोवर्धन पर्वत को उठा देते हैं, उनके साथ हम खुद को कभी तुलना ही नहीं कर सकते हैं कभी भी। इसलिए हम भगवान की चतुरता को देखकर हमारे अंदर जो ईर्ष्या भावना है वो चला जाता है। हम सोचते हैं कि ये गोवर्धन को कभी मैं ही नहीं उठा नहीं पाऊंगा, मैं तो टेबल को भी उठा नहीं सकता, गोवर्धन को दूर की बात है ना। ठीक है, हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक शादी किया, दो शादी किया, पांच शादी किया, लेकिन भगवान के पास कितने हैं, 16,108 रानियां हैं। कोई सुनेगा तो सोचेगा कि अभी इनसे ईर्ष्या करने से कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई बोलता है आपको 16,000 रानियां मैं देता हूँ शादी करो, कोई पुरुष तैयार है इधर, कौन मेंटेन करेगा, है ना, आपको मेंटेन करना पड़ेगा आपको, है ना। तो जब भगवान शादी करते हैं सुनते हैं, हम ईर्ष्या नहीं करते हैं भगवान से। तो इस तरह भगवान के सुंदरता, भगवान ऐसा पता चलता है कि भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवद्धाम में लक्ष्मियाँ जो होती हैं, हजारों हजारों लक्ष्मियाँ हम भगवान की सेवा करते हैं, वो झाड़ू मारती हैं। वैकुंठ धाम में तो जमीन कैसा है, आईने के समान है, उधर भी वो क्या करते हैं, झाड़ू मारते हैं वो, क्यों, क्योंकि भगवान की ध्यान को आकर्षित करना चाहती हैं, भगवान को खुश करना चाहती हैं इसे। और ऐसे बताया गया भागवत में, ऐसे लक्ष्मियाँ भगवान के बहुत निकट रहती हैं और कभी कभी अकेले भी रहते हैं भगवान के साथ, फिर भी कभी भी भगवान के साथ उनका निकटता से वो बोर नहीं होते, बोर होना सबको मालूम है, बोर नहीं होते वो कभी। इस दुनिया में देखो शादी के पहले बहुत आकर्षण होता है, अगर एंगेजमेंट हो गया तो फोन में इतना बात करते हैं एक दूसरे के साथ लोग शादी होने के पहले से, लेकिन अगर शादी हो गया तो लोग सोचते हैं अभी शादी हो गया, उनको लगता है कि सच अ ग्रेट थिंग इन माई लाइफ हैज हैपन। लेकिन कुछ समय के बाद देखो एक साल हो गया, दो साल हो गया, तीन साल हो गया, धीरे धीरे क्या होता है वो जो मिस्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है,
जादुई अनुभव,
हाँ वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, चला जाता है वो। आप सोचते हैं कि पत्नी क्या बड़ी बात है, मैंने देख लिया है, पत्नी सोचते हैं एक क्या बड़ी बात है, प्रभु जी को देख लिया, वो भी सोचते हैं। लेकिन शादी के पहले लगता है कि पुरुष को लगता है कि ये तो देवी देखने में अप्सरा जैसा सोचते हैं, और स्त्री क्या सोचते हैं, ये प्रभु इतने बड़े प्रभु हैं। लेकिन शादी के बाद क्या है, सब रुचि चला जाता है। लेकिन भगवान और लक्ष्मियाँ जो हैं भगवान और लक्ष्मियों के बीच में संबंध ऐसा है भगवद्गीता में, लक्ष्मियों कभी भी बोर नहीं होते। ऐसा बोला गया कि लक्ष्मी विष्णु के पदकमल में बैठकर हमेशा उनके पांव मसाज करती रहती है, भगवान की गुणगान करती रहती है, अनंत शेष भी और लक्ष्मी जी भी ऐसे। लेकिन इस दुनिया में लक्ष्मी किसके पास भी नहीं रहती है ना, एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में चलती है, चंचला चलती रहती है, लेकिन भगवान के पास हमेशा वो रहती है ऐसे। इससे हम समझ सकते हैं भगवान कितने आकर्षक हैं, सर्व आकर्षक। तो ये सर्व आकर्षक भगवान के बारे में कथा सुनो, इससे हमारे हृदय में भी जो ईर्ष्या भावना, अहंकारी भावना, नहीं तो इस तरह की जो तृष्णा, ये सब चीज़ खत्म हो जाएंगे, ऐसे बताते हैं। तो भगवान की कथा और भगवान की दिव्य नाम दोनों महत्वपूर्ण है। हमें भगवान की कथा सुनना चाहिए, क्यों? भगवान की ओर आकर्षण बढ़ाने के लिए कथा सुनना चाहिए। और जब भगवान की ओर आकर्षण बढ़ता है, हम धीरे धीरे भगवान के आश्रय लेंगे हमारे हृदय में। और जब हम भगवान के आश्रय लेते हैं, तभी हम नाम जप करते हैं, बहुत आसानी से भगवान का हम स्मरण कर सकते हैं और आश्रय ले सकते हैं और भौतिक पदार्थों से ऊपर उठ सकते हैं, ऐसे होगा। और किसी भी अवस्था में हमें हमारे ये भगवान की दिव्य नामों का उच्चारण करना और कथा सुनना, इसको कम नहीं करना चाहिए। जैसे जुहू मंदिर में प्रभा जी, जब मंदिर बनाने की इच्छा था प्रभा जी को जुहू में, तो परमिशन नहीं मिल रहा था मंदिर बांधने के लिए। गेस्ट हाउस बांधने के लिए परमिशन मिल गया था, गेस्ट हाउस वगैरह बना सकते हैं, लेकिन मंदिर बनाने के लिए गवर्नमेंट का, सरकार का परमिशन नहीं मिला। तो प्रभा ने अपने शिष्यों को बुलाया, बोला कि ठीक है, हम क्या करेंगे अगर मंदिर बनाने के लिए अनुमति नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे, इस जुहू मंदिर के जगह को हम क्या करेंगे, एक बस स्टॉप बना देंगे। क्या, किस तरह के बस स्टॉप? हमारे संकीर्तन बस आएगा और बुक्स लोड करके जाएगा, सारे बॉम्बे में जाकर वितरण करके वापस आकर लोड करके जाएगा वापस ऐसे। इस तरह हम इसको एक बस स्टॉप बना देंगे, ऐसा बोला प्रभुपाद जी ने, अगर मंदिर बना नहीं सकते हैं तो। तो प्रभुपाद की इतना आइडिया था मन में, तो हर दिन प्रभुपाद वेट करते थे परमिशन के लिए। तो इतना तक कि शाम को बैठकर भगवद गीता क्लास देते थे। तो उन दिनों में प्रभुपाद जी कपिल और देवहूति की संवाद के बारे में ले रहे थे प्रवचन। तो गिरिराज स्वामी और भगवान प्रभु, वो दोनों जाते थे सरकारी अधिकारियों को मिलने के लिए, परमिशन लेने के लिए। तो कभी कभी क्लास के बीच में प्रभुपाद जी देखते थे वो दोनों अंदर आते हुए और दंडवत प्रणाम करते हुए। प्रभुपाद तुरंत पूछते थे, परमिशन मिल गया, ऐसे पूछते थे क्लास के बीच में। तो वो लोग बोलते थे, नहीं प्रभुपाद, सारी प्रभुपाद, अभी तक नहीं मिला। तो उन्होंने बोला, उनको बुलाया पास में, वो लोग आए, परमिशन नहीं भी मिला फिर भी आपको भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए और गाना चाहिए और नाचना चाहिए आपको, उसको कभी भी आप भूलना मत, ऐसे प्रभुपाद ने बोला। इसका मतलब क्या है, परिस्थिति जितना भी कठिन हो हमारे जीवन में, कभी भी हमें भगवान की दिव्य कथाओं को सुनना और स्मरण करना और भगवान के नामों का रेगुलर ध्यानपूर्वक उच्चारण करना, इसको हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। प्रभुपाद ने एक गुरुकुल में बच्चों को देखा, उन्होंने बोला कि बच्चों को इतना तुम कृष्ण की कथा, कृष्ण के संदेश को इतना अच्छी तरह सिखाना चाहिए तुमको कि बच्चे कभी भी भगवान को बोलेंगे नहीं। और अपने ही बारे में प्रभुपाद ने बोला, उन्होंने बोला कि मैं जब छोटा बच्चा था, मैं और मेरे बहन जो पिशिमा, प्रभुपाद की बहन थी पिशिमा, मैं और मेरे बहन हम दोनों पतंग चलाते थे आसमान में, लेकिन कभी कभी पतंग ऊपर उठता नहीं था, तो हम दोनों आंख बंद करके हम प्रार्थना करते थे, हे भगवान हमारे पतंग को बहुत और ऊपर उड़ाने के लिए मदद करो ऐसे। तो प्रभु जी बोलते हैं कि हम दोनों बच्चे थे, इसलिए हम हमारे प्रार्थना था, प्रार्थना एक भौतिक प्रार्थना था, इट वॉज अ मेटीरियल प्रेयर, फिर भी हम वो करने के लिए भी हमने भगवान का आश्रय लिया, प्लीज हेल्प अस टू फ्लाई अवर काइट्स मोर हायर, ऐसे हम प्रार्थना करते थे। तो इस तरह बच्चों को सिखाना चाहिए कि बचपन से लेकर अंतिम सांस तक कृष्ण की कथा और कृष्ण के स्मरण में डूबे रहने के लिए हमें सीखना चाहिए। मैं खास करके ये प्रवचन में आज इसके संबंध में क्यों मैंने बोला, अभी पूना शहर जो है धीरे धीरे बम्बई के समान हो रहा है। आप देखते हैं इधर कैंप में, पहले इतना सरल था हमारा पूना कैंप, लेकिन अभी आसपास में देखते हो बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल आ गया है इधर, अभी बड़ा शॉपिंग मॉल आता है, लेकिन पूना वासी जो होते हैं लगभग तृप्त लोग होते हैं पूना में, वो कुछ झगड़ा इच्छा नहीं करते हैं, और जो उनके जीवन बम्बई के लोगों के जीवन से भी और भी शांत है। पुणे में अनेक लोग जल्दी सो जाते हैं, लेकिन बम्बई में आप देखेंगे 2 बजे तक 3 बजे तक लाइट सारे रात को जलता रहता है। लोग होटल में खाते हैं 1 बजे को बम्बई में, और जीवन और भी तेजी रहता है बम्बई में, और भी तेज़ रहता है, और लोग बहुत भाग दौड़ करते हैं बम्बई में, आपने देखा होगा। अभी पुणे उतना बड़ा शहर नहीं है। पुणे क्या है, कितना लाख लोग हैं पुणे में? 40 लाख लोग हैं पुणे में। बम्बई में कितने हैं? 1 करोड़ 20 लाख लगभग, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है बम्बई में। लेकिन पुणे में भी धीरे धीरे भौतिकता बढ़ रहा है, पुणे में भी हा? हम देख रहे हैं जो चीज़ें बम्बई में हैं अभी पुणे में भी आ रहे हैं। आप देखते हैं हिंजवाड़ी हुंजेरिया में कंप्यूटर कंपनियां बढ़ते जा रहे हैं, और सबका पैसा कास्ट भी महंगा हो रहा है सब चीज़, मगरपटा के एरिया में, कोत रोड में, हिंजवाड़ी में, ऐसे अलग अलग एरिया में डेवलप हो रहा है कंपनियां। तो जब भौतिकता का प्रभाव ज़्यादा होता है, आप नाम भी लो सुबह, लेकिन हम भौतिक चीज़ों के बीच में रहते हैं, हम डूबे रहते हैं। अगर हम दिव्य भावना को जागृत नहीं किया है, हमको ये करंट के समान वो लेके जाएगा हमको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, हमें शास्त्रों को पढ़ने में रुचि डेवलप करना चाहिए, प्रभुपाद की किताबों को खास करके। जब मैं शास्त्र बोलता हूँ, कभी कभी लोग किसी भी किताबों को पढ़ते हैं बाहर से खरीद कर, लेकिन हम खास करके भक्ति वेदांत परपोर्ट्स प्रभुपाद जी की तात्पर्यों का हमें पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें तात्पर्य के साथ साथ तात्पर्य प्रभुपाद जी अच्छे तरीके से समझाते हैं, बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। हर एक भक्त को दिन में कम से कम 30 मिनट प्रभुपाद की किताब पढ़ना चाहिए। अगर आप हर दिन नहीं पढ़ सकते हैं तो हफ्ते में कम से कम 3-4 घंटा पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी की किताब। अगर आप पढ़ते नहीं हो तो आपके जप के ऊपर असर पड़ेगा उसका। आप देखेंगे कि अगर आप तात्पर्य वगैरह पढ़ते नहीं हैं, स्मरण दिव्य, आज मैं रुक्मिणी का कथा बता रहा था, भगवान राम से कथा बता रहा था, तो आप अगर इसको सुनते हैं ध्यान पूर्वक तो आपके मन में ये डूबे रहता है। और ये डंग बीटल का आप बोलेंगे नहीं कभी, है ना, डंग बीटल। तो इस तरह अगर हम सुनते हैं कुछ चीज़ और उसका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भौतिक दुनिया में जाकर हम देखते हैं तुरंत तो स्मरण आता है, हमने प्रवचन में ऐसे सुना, ऐसे ऐसे हम देखते हैं उसको। लेकिन अगर हम प्रवचन नहीं सुनेंगे तो कभी कभी हमारे मुख में भी कुछ नहीं आएगा। एक बार गोपाक्ष महाराज आए थे इधर, वो बता रहे थे कि जो लोग रेगुलर किताब नहीं पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की, उनको क्या होता है, उनका ज्ञान पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन जो लोग, उनको कुछ भी आता नहीं मुँह में दूसरों को बोलने के लिए कृष्ण के बारे में, अगर आप किसी को मिलते हो तो कृष्ण के बारे में क्या बोलना चाहिए, मुँह में आता नहीं है। लेकिन आप रेगुलर तरीके से पढ़ो प्रभुपाद की किताबें, तो उन्होंने बोला कि ज्ञान इधर रहता है ऊपर, तो तुरंत वो मुख से निकल जाता है, आ जाता है। तो हम अभी नया मंदिर बनाने के लिए जा रहे हैं, मैं और श्री गुरुचरण प्रभु और कुछ भक्त लोग हम बात कर रहे थे आज सुबह कि हमने, आपको मालूम है कि हमने ये योजना बनाई थी पहले जब हमने 4 एकड़ का ज़मीन लिया था, कि सब कांग्रीगेशन साथ में आकर ये कमेटी बनाएंगे और ये कमेटी फंड रेजिंग करेगा। और ये कमेटी साथ में आकर बहुत प्रयत्न किया महीनों के लिए, लेकिन बाद में कमेटी ने एक निर्णय लिया कि एक ब्रह्मचारी का एक आप टीम बनाइए, और उस टीम और कांग्रीगेशन टीम दोनों साथ साथ काम करेगा, तभी हम फंड रेजिंग करेंगे। तो हमने ब्रह्मचारियों की कमेटी बनाई, और ब्रह्मचारी लोग आजकल जाते हैं अनेक धनी लोगों को मिलने के लिए, सिर्फ प्रचार करने के लिए, हम पैसा मांगते नहीं हैं उनके पास। कभी कभी एक ब्रह्मचारी और एक गृहस्थ साथ में जाते हैं, आप ब्रह्मचारी प्रचार करते हैं और गृहस्थ नए मंदिर के बारे में बोलते हैं उनको, इस तरह हम करते हैं। और वो जोरदार बहुत अच्छी तरह चल रहा है, जैसे मैं खुद जाता हूँ हफ्ते में 3-4 लोगों के पास, और शिवचंद प्रभु, मुरारी प्रभु, रामानंद प्रभु सब लोग जाते हैं, और कुछ भक्त लोग हैं जैसे केशवानंद प्रभु होटलों में जाकर होटल ओनर्स को कल्टिवेट करते हैं, अनेक शॉपकीपर कल्टिवेशन के डिपार्टमेंट हैं वो लोग भी जाकर अनेक लोग कल्टिवेट करते हैं। तो हमने सुना कि कांग्रीगेशन में कैसे चल रहा है, हमने देखा कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि दूसरे लोग कलेक्शन करेंगे, तो वो सोच रहे हैं कि अगर हम कलेक्शन करेंगे कि नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन दूसरे लोग कलेक्शन करेंगे, इस तरह का भावना है। तो श्री कुचरणपुर और दूसरे ब्रह्मचर्य लोगों का मीटिंग में वो बोल रहे थे कि हमें बहुत डर हो रहा है कि कुछ लोग यात्राओं में जा रहे हैं, अलग अलग यात्राओं में, और कुछ लोग अपने अपने कार्यकलाप में डूबे हुए हैं, और लगता है कि अनेक दिन हमारे भक्त लोग बाहर नहीं जाते हैं ये नया मंदिर के संबंध में। तो शायद आपको मालूम होगा, पुणे में 40-50 से ज़्यादा होर्डिंग्स लगाए गए हैं अलग अलग जगह में, लेकिन वो लोगों ने हमें सिर्फ 3 महीने के लिए वो जगह दिया है वो होर्डिंग लगाने के लिए, वो प्रोपेगेंडा करने के लिए। और भी 50-40-50 हम लगाने वाले हैं, कुल मिलाकर 100 बिलबोर्ड्स। तो हमारी अपेक्षा ऐसा था कि इस तरह होर्डिंग को देखकर जनसाधारण में एक जागरण होगा, लोग जानेंगे तिरुपति बालाजी का मंदिर होने वाला है, राधा वृंदावन चंद्र का होने वाला है, तो लोग आपस में बात करेंगे और हम सब लोग उनके पास जाएंगे तो लोग आसानी से कुछ भगवान के लिए बेंट करेंगे। लेकिन अनेक लोगों के अंदर संकोच है जाने के लिए, नहीं तो दूसरा कुछ कारण है, अनेक लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इन 3 महीनों में अगर हम कलेक्शन नहीं करेंगे तो शायद हमें सालों साल कलेक्शन करता रहना पड़ेगा हमें, और 1 साल 2 साल के लिए। इसके संबंध में मैं श्री कुचरणपुर को बुलाऊंगा कुछ बोलने के लिए, इसके संबंध में वो कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि समय कम है, इसे आराम से बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हो। लेकिन इस तरह और भी हजारों हजारों लोग हैं जो कथा सुनना चाहते हैं पुणे में, और उन लोगों के लिए भी सुविधा चाहिए। आप में से अनेक लोग काउंसलर हैं, लीडर, आपको मालूम है कि अगर हम मीटिंग करना चाहते हैं तो इधर कुछ भी जगह नहीं है, प्रसाद खाने के लिए जगह नहीं है, मीटिंग के लिए जगह नहीं है इधर मंदिर में। तो नया मंदिर हम कुछ दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये गोपरक्ष महाराज, राजनाथ स्वामी, इन दोनों की बहुत इच्छा है, और हमें हमेशा उनकी उपदेश और एनकरेजमेंट सपोर्ट मिला है। आपने देखा गोपरक्ष महाराज और लोकनाथ स्वामी आए थे भूमि पूजा में, बहुत खुश हुए भूमि पूजा में। उसके बाद में मैं फ़ोन में बात करता रहता हूँ उनके साथ और मैं रिपोर्ट भेजता रहता हूँ कैसे चल रहा है। लेकिन ये नया मंदिर अगर हमें बांधना है तो हर एक व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य को निभाना चाहिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आपको कुछ पुशिंग पुश किया जा रहा है, आपको धक्का दिया जा रहा है कि आपको जाओ 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 ऐसे। आपने कितने लोगों ने फॉर्म भरा था जिसमें आपने नाम लिखा है, अनेक नाम लिखा है, 50 नाम 60 नाम ऐसे नाम लिखा है आपने, कितने लोगों ने नाम लिखा है ऐसे फॉर्म में? आधा से ज़्यादा लोग लिखा है, ठीक है। तो जो लोगों का आप पहचानते हैं उनका नाम लिखा आपने, है ना, लेकिन उन लोगों का नाम तो लिख लिया।